विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। भगवान राम को प्रणाम करेंगे इससे पहले कि रामचंद्र जी की कथा को प्रारंभ करें। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम श्रीमती सीता देवी रामचंद्र जी के भाई भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके मित्र श्री सुग्रीव और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। तो रामायण की चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। कल चर्चा हम लोग कर रहे थे कि कैसे भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं, स्वागत होता है उनका, जनक महाराज स्वयं आकर स्वागत करते हैं और फिर वो वहाँ रुकते हैं, वहाँ विश्वामित्र की कथा वो सुनते हैं। तो कल हम लोग विश्वामित्र की कथा सुन रहे थे कि कैसे वो ब्रह्म ऋषि पद को अंततः प्राप्त करते हैं, काफ़ी तपस्या के बाद अंततः ब्रह्म ऋषि पद को वो प्राप्त करते हैं। तो अब श्री रामचंद्र जी के विवाह का वर्णन आज करेंगे। अलग अलग संस्करणों में थोड़ा बहुत भेद दिया गया है इस विशेष प्रसंग को लेकर। वाल्मीकि मुनि इसको बहुत संक्षेप में कह देते हैं और थोड़ा सा भेद है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब रामचंद्र जी से कहा, रामचंद्र जी ने कहा और विश्वामित्र मुनि ने जनक से कहा कि उस धनुष को लाइए। कल हम धनुष की भी बात कर रहे थे, कैसे ये धनुष आए। जैसे एक धनुष जो शिव जी का था वो इनके पास आया देवराज से होते हुए, और विष्णु का धनुष ऋचिक ऋषि से जमदाग्नि, जमदाग्नि से परशुराम के पास आया। तो अब जब वो रथ, हम बता रहे थे कि कैसे खींचकर 5000 लोग लाते हैं, तो विश्वामित्र ने कहा ये देखना चाहते हैं, इनको दिखाइए। तो उस समय जनक ने सीता के भी प्राकट्य की बात कही। उन्होंने कहा कि ये पुत्री मुझे प्राप्त हुई थी जब मैं हल चला रहा था, एक यज्ञ मैंने किया था और यज्ञ के बाद भूमि को जोत रहा था, तो हल के अग्रभाग में ये छोटा सा एक कुछ लगा, क्या है, तो वहाँ वो खोदा तो एक बक्सा मिला और उसके अंदर ये पुत्री मुझे प्राप्त हुई। क्योंकि हल का अग्रभाग सीत कहलाता है इसीलिए इसका नाम सीता दिया। जनक की पुत्री हैं इसीलिए जानकी कहलाई। तो उन्होंने ऐसे वर्णन किया। अध्यात्म रामायण में अन्य वर्णन भी है सीता देवी के प्राकट्य का, और फिर एक पूर्व की कथा भी बताई जाती है वेदवती की, कि ऐसा वर्णन है कि रावण बहुत दुराचारी था, जहां भी जाता था अगर उसको कोई सुंदर स्त्री दिख जाती थी तो तुरंत विवाह करना, काम वासना उसके अंदर बड़ी तीव्र हो जाती थी। कुछ कमियां थी रावण में, एक सुंदर स्त्री और सोना, गोल्ड उसको बहुत प्रिय था। तो जैसे जो लंका है, सोने की नगरी है, तो सीता देवी का वर्णन वेदवती के रूप में भी किया जाता है कि एक समय रावण जा रहा था, आकाश मार्ग से उसने देखा नीचे वन में एक बहुत सुंदर स्त्री, युवती तपस्या कर रही है। आश्चर्य की बात हुई रावण के लिए, ऋषि मुनियों को तपस्या करते देखा था लेकिन ये सुंदर युवती तपस्या कर रही है। रावण तुरंत नीचे आए, रावण ने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि दरअसल मेरा नाम है वेदवती, मैं एक ऋषि की पुत्री हूं, मेरे पिता चाहते थे कि मेरा विवाह भगवान विष्णु से हो लेकिन संभव नहीं हुआ और वो इसी दुख में उन्होंने अपना देह त्याग दिया और अब मैं तपस्या कर रही हूं अपने पिता की उस इच्छा को पूरा करने के लिए, मैं भी विष्णु को ही प्राप्त करना चाहती हूं पति के रूप में। तो फिर रावण ने कहा कि अरे विष्णु, किससे तुम विवाह करना चाहती हो? विवाह करना है तो मुझसे करो, तुम्हें मैं अपनी रानी बनाकर रखूंगा। और उसने अपना बड़ा गुणगान किया, लंकेश्वर इत्यादि। तो वेदवती ने कहा कि आपके लिए ठीक नहीं है, जब किसी स्त्री ने किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार कर लिया है तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस समय रावण की जो काम वासना थी वो बड़ी तीव्र हो गई, तो रावण ने जबरदस्ती वेदवती को ले जाना चाहा, तो उसने उसके बालों को पकड़ लिया और कहा कि अगर नहीं मानोगी तो जबरदस्ती ले जाएंगे। तो उस समय वेदवती ने कहा कि मेरी तपस्या का बल इतना है कि मैं चाहूं तो अभी आपको जलाकर राख कर सकती हूं, लेकिन मैं आप जैसे व्यक्ति के लिए अपनी तपस्या का बल खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो विष्णु को प्राप्त करना चाहती हूं। तो उस समय वेदवती ने अपने हाथ को फरसा बना दिया और जैसे बाल पकड़े हुए थे तो उन्होंने वो बाल काट दिए, जिसके कारण रावण से वो छूट गई और तुरंत उन्होंने अग्नि प्रकट की अपनी योग शक्ति से और उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन प्रवेश करते हुए उन्होंने रावण से कहा कि क्योंकि तुमने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, मैं तुम्हें श्राप जरूर दूंगी और मेरा श्राप ये है कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। तो ऐसे बताया जाता है कि वही वेदवती फिर अगले जन्म में जब उन्होंने अपने देह को त्याग दिया और फिर उन्होंने सीता का रूप प्राप्त किया, तो ऐसे बताया जाता है। तो जनक महाराज ने सीता की कथा कही और फिर उस धनुष को मंगाया, बड़ा भारी धनुष, और उन्होंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं उससे विवाह कर दूंगा, अगर राम चढ़ा दें तो मुझे बड़ा आनंद होगा। जनक महाराज कहते हैं, और कहते पूर्व काल में बहुत से राजा आए थे, ऐसा नहीं है कि किसी ने प्रयास नहीं किया, बहुत से राजा आए थे लेकिन सब परास्त हो गए, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसको हिला तक नहीं पाए। तो ऐसे में जब वो सारे राजा हार गए तो बड़े क्रोधित होकर उन सारे राजाओं ने मिलकर मेरे राज्य को घेर लिया और डेरा डाल दिया, कहीं कुछ बाहर नहीं जाने दे रहे थे, लॉकडाउन। तो जनक महाराज कहते मेरे राज्य को लॉकडाउन कर दिया उन्होंने, तो कहीं बाहर नहीं जाने दे रहे थे। तो धीरे धीरे एक वर्ष बीत गया, हमारे पास जो कुछ था खाने पीने का सामान सब समाप्त हो गया, हमें बाहर जाने की तो अनुमति नहीं थी क्योंकि उन्होंने डेरा डाला हुआ था उन सारे राजाओं ने जो हार चुके थे, और मेरे पास इतनी क्षमता नहीं थी। तो उस समय मैंने देवताओं से प्रार्थना की और देवताओं ने सेना भेजी और फिर उनको सब परास्त किया गया। तो ऐसे जनक महाराज कहते हैं कि ऐसे पूर्व काल में हुआ है, कई लोगों ने आक्रमण कर दिया इस कारण से, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा पर मैं बना रहा, तो अगर ये राम कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो जनक महाराज के कहने पर वो आया, रामचंद्र जी ने देखा उस धनुष को। तो ये वर्णन वाल्मीकि रामायण में, अन्यत्र अन्य संस्करणों में बड़ा थोड़ा सा अंतर दिया गया है इसका। जैसे एक संस्करण में कहा कि स्वयंवर हुआ सीता का, और उसमें बड़े बड़े राजाओं को बुलाया गया, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं जनक महाराज कि ऐसा हुआ था और सब राजा हार गए थे तो उन्होंने आक्रमण किया। तो सारे राजाओं को बुलाया गया, स्वयंवर का वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है स्वयंवर का उस संस्करण में। वहां कहते हैं कि सारे राजा आए, सब बैठे हैं, सीता से सब विवाह करना चाहते हैं, और एक से एक प्रतापी राजा सबने प्रयास कर लिया, लेकिन कोई भी, और उस स्वयंवर में वाल्मीकि मुनि के साथ रामचंद्र जी और लक्ष्मण भी बैठे हैं। तो ये जब स्वयंवर प्रारंभ हुआ, सारे राजा एक एक कर आ रहे हैं, कोई भी नहीं कर पाया, रामचंद्र जी आराम से बैठे हैं। एक स्थान पे तो वर्णन है कि रावण भी आया और जब रावण आया तो सब घबरा गए, क्योंकि रावण तो बड़ा शक्तिशाली है, वो तो उठा लेगा, और है भी शिवजी का भक्त, रावण बहुत बड़ा भक्त है शिवजी का। तो सब घबरा गए कि ये तो पूरी रामायण बदल जाएगी, मतलब देवता लोग घबरा गए कि ये तो क्या होगा। तो उस समय जब रावण उठाने गया उसको, तो शिवजी ने देखा, तो शिवजी ने भी कहा कि अरे नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो रही है थोड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिवजी ने अपने अंगूठे से उसको दबा दिया। शिवजी कभी कभी ऐसा करते हैं। एक समय रावण को अहंकार हो गया था और सोच रहा था कि अपनी शक्ति को कहाँ दिखाऊं, वो कहीं दिख नहीं रहा था। जब किसी के अंदर बड़ी ज्यादा शक्ति होती है और उसका सही उपयोग नहीं होता है तो फिर वो उत्पात मचाते हैं। तो रावण ने सोचा कि अब क्या करें, कुछ तो करना है, तो सोचा कैलाश को हिला देता हूं, कैलाश को उठा देता हूं। कैलाश पर उस समय पर्वत पर शिवजी पार्वती जी बैठे हैं और शिवजी ध्यानमग्न थे, और रावण ने जाकर पर्वत को हिलाने का प्रयास किया, बस ऐसे उठाने का प्रयास कर रहा था। शिवजी ने देखा अच्छा, तो अपना जरा सा अंगूठा हिला दिया शिवजी ने और रावण दब गया उसके नीचे। कहते हैं कि उस समय उसने बड़ा सुंदर स्तोत्र कहा, प्रार्थना की शिवजी को कि आप कृपया मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि रावण दब चुका था। तो ऐसे इस समय भी जब रावण आया तो भारी कर दिया शिवजी ने, उठा नहीं पाया रावण, वो भी परास्त होकर चला गया। तो अब ये वर्णन है कि कोई उठा नहीं पाया, जनक महाराज दुखी हो गए, उन्होंने खड़े होकर घोषणा की, लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है, कोई वीर नहीं जो इस कार्य को कर सके। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, लक्ष्मण खड़े हो गए। अब तक तो चुपचाप बैठे थे लक्ष्मण कि चलो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, अब उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वो खड़े हो गए। लक्ष्मण ने कहा, जनक महाराज आपने कहा कैसे, ये यहां रघुवंशी राम बैठे हैं और उनके रहते हुए आपने ये कहा कैसे कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, इतना बड़ा अपमान कर दिया आपने, और आप ये धनुष उठाने की बात कहते हैं। मैं चाहूं तो मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता हूं, और बात भी सही है वो उठाते ही हैं, उठा सकता हूं क्या, वो तो उठाते ही हैं अनंत शेष के रूप में। तो उन्होंने कहा कि मैं ये जो ब्रह्मांड है इसको एक गेंद की तरह उठा सकता हूं और पूरे ब्रह्मांड को एक मटके की तरह तोड़ सकता हूं, ये धनुष क्या चीज है, मैं अभी उठा देता हूं इसको। रामचंद्र जी ने सोचा ये क्या हो रहा है भाई, तो रामचंद्र जी ने उनको कहा इधर बैठ जाओ, बड़ा भाई कौन है। रामचंद्र जी ने ये कई बार कहा, इसीलिए लक्ष्मण अगली बार बलराम जी बनकर आया, उन्होंने कही छोटा भाई बनना बड़ा गड़बड़ है। रामचंद्र जी हर जगह रोक देते थे, आगे भी हम लोग देखेंगे वनवास हुआ, बहुत क्रोध में है लक्ष्मण, राम ने बड़ा भाई कौन है, अच्छा ठीक है सुन लो चुपचाप। सीता को कह दिया कि जाइए छोड़कर आइए वन में, लक्ष्मण कह रहे कैसे, बड़ा भाई कौन है करो, बहुत जगह हुआ, आएगा धीरे धीरे हम बताएंगे। तो यहां भी कहा चुपचाप बैठ जाओ, और फिर भी राम उठे नहीं, ऐसा नहीं कि राम ने कहा मैं जाता हूं तुम नहीं जाना, राम चुपचाप बैठे, बोले बैठ जाओ। तो फिर विश्वामित्र मुनि ने राम से कहा, कि राम अब तुम उठो। तो उस समय राम उठे, तब तक आराम से बैठे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि अरे कोई ऐसा ना हो कि कहीं कोई उठा ले और फिर हमारा क्या होगा, कुछ नहीं, आराम से बैठे थे। तो भगवान है, सब जानते थे कुछ होने वाला नहीं है, सारी व्यवस्था कर कर बैठे थे। तो जब गुरु ने कहा तब रामचंद्र जी उठे। बहुत महत्वपूर्ण बात हमें सिखाने के लिए कि जीवन में गुरु के निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन गुरु के द्वारा निर्देशित होना चाहिए, आवश्यक है। ये दिखलाने के लिए रामचंद्र जी बैठे रहे जब तक विश्वामित्र मुनि ने कहा नहीं कि उठो अब तुम जाओ। बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि गुरु जानते हैं कि हमें कैसे उपयोग करना है, इसीलिए गुरु के द्वारा निर्देशित होना चाहिए जीवन। बहुत सुंदर कथा है, एक व्यक्ति था, वो पानी भरता था मंदिर में, तो नीचे नदी थी, नदी से पानी भरकर ऊपर ले जाता था। तो एक लकड़ी ऐसे टांगता था अपने दोनों कंधों पर, तो एक लकड़ी होती थी, एक मटका इस तरफ दूसरा मटका इस तरफ, और दोनों में पानी भर कर ले जाता था। तो उनमें से एक मटका उसमें छेद था, तो जब ये पानी भरता था और जब तक पानी भरकर ऊपर पहुंचता था वो मटका खाली हो जाता था, लेकिन फिर भी वो रोज भरता था। और दूसरा मटका वो तो सही था, तो रोज होता, काफी दिन बीत गए। तो एक दिन ये जो जिस मटके में छिद्र था उसने अपने मालिक से कहा, उस व्यक्ति से कहा कि आप व्यर्थ ही मुझे उठा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाता, जल आप भरते नीचे से जब तक ऊपर पहुंचता है सारा खाली हो जाता है, तो मैं तो व्यर्थ, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, आप क्यों मुझे उठा रहे हैं, आप ऐसा करिए फेंक दीजिए दूसरा ले लीजिए। सॉरी। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ये सही बात है कि तुम्हारे अंदर छिद्र है और मैं रोज पानी भरकर लाता हूं, ऊपर आने तक समाप्त तो हो जाता है, लेकिन जरा अपनी तरफ देखो। वो व्यक्ति क्या करता था, रोज उस मटके को एक ही तरफ रखता था और उसने उस तरफ, जय शशि गौर नटराज दयाल निताय की जय, उसने उस तरफ रमन कृष्ण प्रभु की थोड़ी शक्ति ज्यादा है नहीं? तो वहां पर उसने उस तरफ फूलों के बीज डाल दिए थे, पेड़ों के बीज डाल दिए, छोड़ दो उसको, कोई आवश्यक नहीं है, रहने दो। तो उसने वहां पर उस बहुत सारे बीज डाल दिए थे, तो रोज जब वो लेकर जाता था तो दरअसल पानी व्यर्थ नहीं हो रहा था, वो पानी को डालता हुआ जाता था। और उसने दिखाया, देखो तो उस तरफ जहां पर सही मटका था उस तरफ कुछ नहीं था, दूसरी तरफ देखा तो बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष या बहुत सुंदर सुंदर पौधे वहां पर आ गए थे। तो बड़ा प्रसन्न हुआ ये मटका जिसमें छेद था, अब इन मटकों को बदल दीजिए, व्यक्ति को बदल दीजिए, वो व्यक्ति है गुरु। और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो छेद वाला मटका कौन है, क्या आवश्यकता है बताने की कौन है वो छेद वाले मटके? हाँ तो बोलिए, इतना घबरा क्यों रहे हैं? हम लोग उस छिद्र वाले मटके की तरह हैं, कोई वैल्यू नहीं है हमारी, लेकिन गुरु उस छेद वाले मटके को भी उपयोगी बना देते हैं, उनको भी योग्य बना देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे उन्होंने लगाया कि फूल आने लगे और वो फूल फिर भगवान की सेवा में लगे, पानी भले ना लगा हो लेकिन फूल लग गए, इन्हें कहते हैं गुरु। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन गुरु के द्वारा निर्देशित हो। आज के समय में हमारा जीवन किसके द्वारा निर्देशित है? आज जो समाज में वातावरण है, जो आधुनिक जगत है, ये किसके द्वारा, जीवन किसके द्वारा निर्देशित है? गुरु के द्वारा नहीं, भक्तों के द्वारा नहीं, मीडिया के द्वारा निर्देशित है। सही बात है, आज लोगों को बीमारी हो जाती है तो YouTube पे जाते हैं देखने के लिए क्या करना है, Google उनके गुरु हैं। लोगों को इतनी आसक्ति हो गई है इंटरनेट से, जैसे हम उस दिन भी बता रहे थे, कि ये लॉकडाउन तो ठीक है, अगर इंटरनेट बंद कर दें तो पूरे देश जला देंगे लोग कोई अंदर नहीं बैठेगा। आज अंदर इसलिए बैठे हैं कि इंटरनेट चालू है, तो कोई चिंता नहीं है उनको, और 20 दिन बढ़ा दीजिए मोदी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम तो अंदर बैठे हैं, इंटरनेट चालू है। इतनी आसक्ति, तो अपने जीवन को दूसरों के हाथ में मत दीजिए, ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत दीजिए जो उसका नाश कर रहा है। मीडिया आपके जीवन को नहीं निर्देशित करे, अन्य लोग जिनको कोई ज्ञान नहीं है, भक्त नहीं है, शास्त्र नहीं है, वे निर्देशित ना करें आपके जीवन को, क्योंकि ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। ऐसा नहीं है हम लोग सोचते हैं कि ठीक है बहुत समय है, जीवन में बिल्कुल समय नहीं है। एक डॉक्टर की कथा है, रिचर्ड, ये प्लास्टिक सर्जन थे, लोगों की प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे, बहुत पैसा कमाया उन्होंने, पहले सर्जरी करके कमाया, फिर अपने मित्र के साथ मिलकर व्यापार किया, उसमें कमाया, बहुत पैसा कमा लिया, बड़े स्वस्थ थे, रोज जिम जाना, अपने आप को स्वस्थ रखना सब करते थे। एक दिन कुछ हल्का सा उनको पीठ में दर्द हुआ, शाम को जिम गए थे, जिम में अच्छा सा वर्कआउट किया और लगा थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो चेक कराने गए, फिर डॉक्टर थे, एमआरआई कराया, पता चला कि उनकी जो बैकबोन है आधी से ज्यादा उसका जो बोन मैरो है समाप्त हो चुका है। आश्चर्य की बात हुई, ये क्या हुआ। फिर दोबारा और चेक्स कराए गए तो पता चला कि उनको कैंसर है, वो भी फोर्थ स्टेज में। डॉक्टर थे बड़े स्वस्थ, उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा कल मैं जिम में था, मैं जानता हूं इसके लक्षण क्या होते हैं, हो सकता है ये मुझे ना हो, फिर से चेक करो, फिर से चेक कराया लक्षण। इसलिए ये जीवन उनका और बहुत विस्तार से वर्णन है उन्होंने अंत में, और ये विस्तार से बताया कि मैंने क्या गलती की, आप लोग मत कीजिए। लेकिन बहुत देर से उनको ये अनुभव हुआ, भगवान के शरण गए वो, कभी भगवान के पास नहीं जाते थे, समय नहीं था, पैसा कमा रहे थे, लेकिन भगवान की शरण गए। लेकिन भगवान को अपनी शरण लाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें इंतजार नहीं करना है। इंतजार मत करिए कि भगवान आपको कुछ ऐसी चीज दें जिससे आपको बाध्य होकर उनके पास जाना पड़े, प्रेम से जाइए। एक और कथा का स्मरण आ रहा है कि एक बालक एक पार्किंग लॉट में था, छोटा सा बच्चा, गाड़ियां बड़ी तेजी से जा रही हैं, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, अचानक एक व्यक्ति ने नई गाड़ी ली, वो निकाल रहा था तो देखा उसका जो स्क्रीन था आगे का, जो उसकी विंडशील्ड थी, कांच था, किसी ने पत्थर मारा, बहुत बड़ा ईंट मारा, टूट गया। उसको बड़ा गुस्सा आया, नई कार बाहर निकाल रहा था, कैसे हो गया, उतरा देखा ये बच्चा खड़ा था, उसने पूछा तुमने मारा, बोले हाँ मैंने मारा, तो बहुत गुस्सा करने लगा कि किसका बच्चा है ये, क्या है, क्यों मारा तुमने, तो उसने दिखाया उस तरफ, दरअसल उसका एक भाई था, बड़ा भाई, जो जिसके पांव नहीं थे, वो व्हील चेयर पे था, ये उसको ले जा रहा था, वो गिर गया था और इसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उसको उठा के फिर से बिठा सके, तो वो बहुत देर से गाड़ियों को रोकने का प्रयास कर रहा था, कोई गाड़ी रुक जाए, एक रुक जाए, सबसे प्रार्थना कर रहा था, कोई नहीं रुकी, अंत में उसने ईंट उठाकर मार दी तो गाड़ी रुक गई। हम लोग भी इसी तरह इस आधुनिक जगत में बड़ी स्पीड में जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। इंतजार मत कीजिए कि भगवान को ईंट मारनी पड़े आपको रोकने के लिए, पहले ही समर्पण कर दीजिए, बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए यहां ये बड़ी महत्वपूर्ण बात रामचंद्र जी ने सिखलाई हमें कि गुरु के द्वारा जीवन निर्देशित हो, मीडिया निर्देशित नहीं करे, सोशल मीडिया निर्देशित नहीं करे। कोई ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को दूसरे के हाथ में मत सौंपिए, एक प्रमाणिक गुरु के हाथ में सौंपिए ताकि जीवन सुधर जाए, अन्यथा केवल कष्ट होंगे। तो ऐसे श्री रामचंद्र जी अब उठे जाने के लिए, और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो सारे जो ऋषि मुनि हैं वो बड़े प्रसन्न हो गए, जैसे जब सूर्य उदय होता है तो जितने भी कमल हैं वो बड़े खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। आप जानते हैं कमल केवल सूर्य की रोशनी में ही खिलता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो कमल बंद हो जाते हैं। हमें एक अनुभव हुआ था इसका, हम लोगों ने अपने मंदिर में एक छोटा सा पॉन्ड बनाया था, तालाब, कमल खिलाने के लिए कि भगवान को रोज कमल अर्पण करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर कमल आते थे उसमें। तो होता था यही कि सुबह में जैसे सूर्योदय होता था कमल खिल जाते थे, फिर सूर्यास्त होने के बाद बंद हो जाते थे कमल, ऐसे रात भर बंद रहते थे। एक दिन हम उस तालाब के निकट जप कर रहे थे रात्रि के समय, तो हमने देखा कि दो कमल खिले हुए हैं। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये रात को कैसे कमल खिल गया, रात को तो केवल ब्रह्म कमल खिलता है, वो ब्रह्म कमल नहीं थे, तो ये रात को कैसे खिल गया, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमने जब देखा इधर उधर तो हुआ ये था कि हम लोगों ने उस वहां पर झरना वगैरह बनाया था, अच्छा उसको डेकोरेट किया था, तो उसमें लाइट्स लगवा दी थी रात के लिए। तो ये जो कमल था इसके चेहरे पर सीधी एक लाइट पड़ रही थी, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसीलिए खुल गया, उसको लगा कि सूर्योदय हो गया है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को वो बंद हो गया, उसके बाद थोड़े समय बाद किसी ने लाइट्स ऑन कर दी, तो जैसी लाइट्स ऑन हुई तो सूर्य जो प्रकाश पड़ा उसके ऊपर वो पुनः खिल गया। तो हमने फिर उनको कहा ये तो लाइट्स चेंज करवाओ, बेचारा ये सो नहीं पाएगा रात भर। तो सही बात है, क्योंकि जब तक लाइट रहेगी फिर अगले दिन सुबह सूर्य आ जाएगा, बेचारा सोएगा कब। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी लाइट घुमाई, अन्य जितने कमल थे बंद थे क्योंकि उन पर लाइट नहीं गिर रही थी। तो खैर, जैसे सूर्य उदय होता है तो जितने भी कमल हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही जैसे ही रामचंद्र जी उठे जाने के लिए सारे साधु जितने थे वो बड़े प्रसन्न हो गए वहां उपस्थित, कि यस अब सही कार्य होने जा रहा है। तो ऐसे रामचंद्र जी चले। तो जब रामचंद्र जी आ रहे थे, सीता देवी की माता बैठी थी और उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा ये विश्वामित्र को कोई समझाए, ये छोटे से बच्चे को भेज रहे हैं, 16 साल के थे तो छोटे बच्चे को भेज रहे हैं इतना बड़ा धनुष उठाने के लिए, जिसको बड़े बड़े प्रतापी लोग नहीं उठा पाए, इनको बुद्धि नहीं है, अरे कोई रोको इन्हें। तो उनके साथ उनकी एक और भी सखियां बैठी थी, तो उसमें से एक सखी ने कहा कि देखिए केवल छोटे हैं इसका अर्थ ये नहीं बड़ा काम नहीं कर सकते। अगस्त्य मुनि बहुत छोटे थे, आप जानते मुनियों में अगस्त्य मुनि बहुत छोटे हैं हाइट में, अगस्त्य मुनि बहुत छोटे थे लेकिन सारा समुद्र पी गए थे। सूर्य छोटा सा होता है, दिखता है दिखने में छोटा सा, लेकिन सारे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहती हैं, मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वश में कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहती मंत्र बड़ा छोटा होता है लेकिन भगवान को वश में कर लेता है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये छोटा है तो कुछ कर नहीं पाएगा। तो अब फिर वो चलने लगे, सीता देवी ने देखा। अब सीता देवी तो नित्य संगिनी है, वो तो रामचंद्र जी भी जानते हैं और सीता देवी भी जानती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इस समय सीता देवी एक साधारण मनुष्य की भूमिका में है, वो घबरा गई कि अगर रामचंद्र जी नहीं उठा पाए तो क्या होगा। तो उस समय वो प्रार्थना करने लगी भगवान से, शिव जी से, इसको हल्का कर दीजिए, ये धनुष को थोड़ा अभी के लिए हल्का कर दीजिए ताकि रामचंद्र जी आराम से उठा लें। तो सीता देवी प्रार्थना कर रही हैं, और उस समय लक्ष्मण वो बैठे हुए थे, तो लक्ष्मण तो जानते थे क्या होने वाला है, क्योंकि रामचंद्र जी जा रहे हैं वो तो बड़ी आसानी से उठा लेंगे इस धनुष को। तो उन्होंने पृथ्वी को दबा दिया कि कहीं भूचाल नहीं आ जाए, भूकंप नहीं आ जाए, होगा ही, जैसे उठाएंगे भूकंप आएगा। और साथ साथ उन्होंने वराहदेव से कहा, अनंत शेष जो उनके ही मूल हैं, तो उनसे कहा पकड़ कर रखो पृथ्वी को, जरा संभाल कर, अब रामचंद्र जी धनुष उठाने वाले हैं। तो ऐसे जब ये स्थितियां हुई तो उस समय रामचंद्र जी गए, उन्होंने प्रणाम किया उस धनुष को, क्योंकि शिवजी का धनुष है। देखिए हम लोग जब कोई कार्य करने जाते हैं, अगर उस कार्य को भी हम महत्व दें, आदर दें, तो कार्य सरलता से हो जाता है। क्योंकि रामचंद्र जी करने जा रहे हैं, उन्होंने देखा धनुष है, उन्होंने ऐसे ही नहीं उठा दिया कि इसको मैं ऐसे ही उठा दूंगा, उन्होंने प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, और फिर उन्होंने उस धनुष का स्पर्श किया। और जैसे कोई बालक खेल खेल में आसानी से, एक कुकुरमुत्ता जानते हैं आप लोग, हम हिंदी में पूछ रहे हैं, तो उसको ऐसे उखाड़ लेता है, उसको उखाड़ने में कोई मेहनत लगती है, बच्चा भी ऐसे उखाड़ लेता है। तो रामचंद्र जी ने बड़ी आसानी से उस धनुष को उठा दिया। जैसे ही धनुष उठाया, इतनी तेज आवाज हुई, फिर उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, तो रामचंद्र जी ने उस धनुष को थोड़ा सा मोड़ा, प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, और थोड़ा सा उन्होंने मोड़ा तो उसी में वो टूट गया। बड़ी भयंकर आवाज आई, पृथ्वी को तो पहले से ही पकड़े हुए थे लक्ष्मण जी के, कहीं हिल ना जाए, बहुत भयंकर आवाज हुई, शिव जी का धनुष टूट गया। वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि जब वो धनुष आया और रामचंद्र जी से कहा, तो रामचंद्र जी गए, उन्होंने उठा लिया बड़ी आसानी से, और उठाने के बाद प्रत्यंचा चढ़ा दी, और जैसे ही थोड़ा सा मोड़ा वो टूट गया। जनक महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, उनके वंशजों का धनुष टूटा है, लेकिन वो बड़े प्रसन्न हो गए कि ठीक है, अब सीता का विवाह हो जाएगा। तो फिर ऐसे धनुष टूट गया और अब सीता का विवाह होना था। तो वाल्मीकि रामायण पर वापस आते हैं, बहुत सुंदर वर्णन सीता के विवाह का है। अब जब धनुष टूट गया, तो सबसे पहले जनक महाराज ने दशरथ के घर संदेश भेजा अयोध्या, कि आपके पुत्र ने ऐसे ऐसे किया है और अब उनका विवाह होगा, आपको बुलाया जा रहा है। तो दशरथ को संदेश आया, दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया, उन्होंने सबको बुलाया और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ऐसे ऐसे जनक महाराज का संदेश आया है, रामचंद्र ने ऐसा किया है, क्या हम लोगों को जाना चाहिए विवाह के लिए? सब लोग ने, अरे क्यों नहीं, तुरंत जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, सब तैयार हो गए। तो देखिए, यहाँ दशरथ महाराज आगे भी और यहाँ भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रकट करते हैं कि जो लोग किसी पद पर होते हैं, उनका जीवन दूसरों के लिए है, उनको अपने आप निर्णय नहीं लेने चाहिए। इसी तरह कृष्ण भावनामृत के प्रचारक हैं, हर प्रचारक का जीवन दूसरों के लिए है। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे दशरथ महाराज ने किया, तो जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं, चाहे कोई राजा हो या प्रचारक हो या जो भी, तो ये मानना चाहिए कि वो जीवन दूसरों के लिए है। इस भाव में प्रचार करें। प्रचार कौन कर सकता है? जिसके अंदर करुणा है, करुणा का मूर्तिमान स्वरूप है। अगर करुणा नहीं है तो प्रचार नहीं हो सकता, और इसका बहुत स्पष्ट प्रमाण दिया श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, वहां पर देखते थे कि युवक युवतियां नशे में पड़े हैं, आनंद ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उसी को जीवन मांग रहे हैं। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आते थे उनको देखकर कि भगवान का अंश है और किस तरह अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। ये करुणा थी जिससे प्रभुपाद प्रचार कर सके, उनके हृदय की करुणा। ये करुणा थी जो 70 वर्ष की उम्र में उन्हें वृंदावन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिस करुणा ने। ये करुणा थी प्रभुपाद के हृदय की, कि वो चाहते थे लोगों का उद्धार करना। इसीलिए वृंदावन, जहां अपनी ऐसी उम्र में 70 वर्ष की उम्र में लोग वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते, अगर वृंदावन से बाहर आते हैं तो जल्दी से वापस जाना चाहते हैं वृद्धावस्था की, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं वृंदावन के बाहर। प्रभुपाद ने उस अवस्था में छोड़ा, क्योंकि जीवन दूसरों के लिए। तो दशरथ महाराज इसको दिखलाते हैं। तो अब फिर सबके जाने का तैयारी हुई, सब लोग आए, दशरथ महाराज आए, अन्य सब उनके गुरु भी आए। तो जनक महाराज ने बहुत स्वागत किया, स्वाभाविक है, आए हैं दशरथ महाराज, इतने बड़े राजा हैं, और विशेषतः वशिष्ठ मुनि आए थे, तो बड़ा स्वागत किया उन्होंने, बड़ी नम्रता से उन्होंने स्वागत किया वशिष्ठ मुनि का और अपने प्रेम को दर्शाया। उन्होंने कहा, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूं। देखिए, हम लोग ये कई बार बातें सुनते हैं, ऐसे शब्द कहीं सुनते हैं शास्त्र में कि कोई कोई महान भक्त आए, कोई साधु आए तो उनसे कहा जाता है कि आप, आपको देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। ये सही में होता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल एक कहने के लिए, शब्द बनाने के लिए कह दिया गया है। वो कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि मेरा भाग्य है मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं, बहुत कृतज्ञ हूं, आपने मानवता के लिए इतना किया है, समाज के लिए इतना किया है, आपने शास्त्रों का इतनी अच्छी तरह से अध्ययन करके उसको प्रस्तुत किया है, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं धन्य हूं। कृतज्ञता, प्रेम किस तरह से दर्शाया जा सकता है? इस जगत में लोगों को प्रेम दर्शाने के कई तरीके पता हैं, लेकिन प्रेम दर्शाने का सच्चा तरीका है कृतज्ञता। लव इज एक्सप्रेस्ड थ्रू ग्रेटफुलनेस। प्रेम को केवल कृतज्ञता के द्वारा दर्शाया जा सकता है, वो प्रेम होता है। जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में हैं, और अगर हम लोग चाहें कि हम प्रभुपाद के प्रति प्रेम दर्शाना चाहते हैं तो कैसे दर्शाएंगे? कृतज्ञता के भाव में। हम कृतज्ञ रहें कि प्रभुपाद ने हमारे जीवन को बचाया है, हम कृतज्ञ रहें कि प्रभुपाद ने हमें वो मार्ग दिया है जो जन्मों जन्मों से हमें नहीं मिला, हम कृतज्ञ रहें कि प्रभुपाद ने सारे कष्ट सहन कर ये एक संस्था को स्थापित किया जिससे आने वाले 10,000 वर्षों तक लोगों का उद्धार होता रहे। कृतज्ञता है। हमें केवल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद बोलना ही कृतज्ञता नहीं है। किस तरह से हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता दर्शा सकते हैं? बहुत से तरीके हैं। कुछ तरीके ये हैं। पहला, उनके ग्रंथों को पढ़ना। हम कहते हैं प्रभुपाद के अनुयायी हैं, लेकिन जो उन्होंने मेहनत करके लिखा, रात रात में जग कर लिखा, हम पढ़ते नहीं हैं। हमें लगता है कोई दूसरा बुक आएगा वो कुछ अच्छा होगा। प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना। तो हम अगर प्रभुपाद के प्रति अपने प्रेम को दर्शाना चाहते हैं, कृतज्ञता दर्शाइए। कैसे? ग्रंथ पढ़िए उनके। सबसे पहली चीज, उनके ग्रंथों को पढ़ें। दूसरा चीज, उनकी संस्था की एकता को बनाए रखें। प्रभुपाद की संस्था को तोड़ना अर्थात प्रभुपाद के शरीर को काटने के समान है। संस्था की एकता को बनाए रखें, सहयोग की भावना से रहें। प्रभुपाद के प्रति ये हमारी कृतज्ञता होगी, क्योंकि प्रभुपाद ने स्वयं कहा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपस में सहयोग कीजिए। तो सच्ची कृतज्ञता श्रील प्रभुपाद के प्रति है कि हम सहयोग की भावना से रहें, मनमुटाव नहीं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की भावना नहीं, सब मिलकर प्रभुपाद के आंदोलन को ऊपर उठाएं। अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, ऊपर उठने की आकांक्षाएं हैं, उनको छोड़कर आंदोलन को ऊपर उठाने की भावना रखें। एम्बिशन नहीं, मिशन, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, तब हम प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता दर्शाते। तो ग्रंथ पढ़ें, सहयोग की भावना से रहें, आंदोलन ये संस्था को तोड़ने का प्रयास ना करें, एक रखने का प्रयास करें और प्रचार करें। प्रभुपाद ने आंदोलन प्रचार के लिए बनाया है, भजनानंदी बाबा जीयों के लिए नहीं। प्रचार करें, जितना हमें पता है जाकर दूसरों को बताएं, जितना हम प्रचार कर सकते हैं करें। ये प्रभुपाद के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट करने का मार्ग है, कृतज्ञता। ऐसे और कई मार्ग हैं। तो इस तरह जनक महाराज बहुत प्रसन्नता से दशरथ और वशिष्ठ मुनि का स्वागत करते हैं और फिर जनक महाराज अपने भाइयों उसको बुलाते हैं, भाई से मिलाते हैं, तो सब आकर मिलते हैं। वशिष्ठ मुनि दशरथ महाराज के वंश का वर्णन करते हैं कि कैसे उनका वंश कहाँ आया, इनके पुत्र ये, उनके पुत्र वो, हम लोग शुरुआत में ये चर्चा कर चुके हैं। और फिर दोनों के वंशों की चर्चा होती है। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि जनक महाराज कहते हैं कि सीता तो राम के लिए है ही, मेरी और एक पुत्री है उर्मिला, उसका भी विवाह लक्ष्मण से कर दीजिए, प्रार्थना करते हैं। तो दशरथ महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ बड़ी अच्छी बात है, वशिष्ठ मुनि स्वीकार करते हैं। और फिर वशिष्ठ मुनि उनसे कहते हैं, आपके भाई है कुशध्वज, इनका नाम था, कल बताया था हमने, क्या नाम था इनका, अरे क्षीरध्वज, आपके भाई हैं कुशध्वज, उनकी भी दो पुत्रियां हैं। ये कौन कह रहे हैं, वशिष्ठ मुनि। दशरथ महाराज चुप बैठे हैं, भरत चुप बैठे हैं, शत्रुघ्न चुप बैठे हैं। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आपके भाई की दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो मैं मांडवी को भरत के लिए स्वीकार करना चाहता हूं और श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न के लिए। जनक महाराज प्रसन्न हो गए, दशरथ महाराज ने कुछ नहीं कहा, बहुत सुंदर बात है, कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा वशिष्ठ मुनि से, महाराज पूछिए तो सही हम लोगों से, या भरत ने कहा आप पूछो तो सही, करना है कि नहीं मुझे करना है, आपने ही निर्णय ले लिया। बिल्कुल प्रसन्नता से स्वीकार किया दशरथ महाराज ने उस निर्णय को, भरत ने प्रसन्नता से स्वीकार किया, कोई विरोध नहीं। इसे कहते हैं गुरु को समर्पण। तो उस समय ये नहीं कहा कि मेरे जीवन का सवाल है, मुझे देखने तो दीजिए कौन है वो, गुरु ने कह दिया, उसको स्वीकार कर लिया। सरल जीवन कृष्ण की ओर जाने का, गुरु की बातों पर विश्वास, गुरु के शब्दों पर श्रद्धा, और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कृष्ण को प्रसन्न करने का। कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब हम ये श्रद्धा, ये विश्वास दिखलाते हैं गुरु के शब्दों में। तो इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने कह दिया और फिर सबने उसको स्वीकार कर लिया। तो फिर अब चार भाई हैं और चार बहनें हैं, तो उनका विवाह होना है। तो अभी अगले दिन ये सब बातें हो गई। दशरथ महाराज को जब पता चला कि अब चार पुत्रों का मेरा विवाह होगा एक साथ, बड़े प्रसन्न हो गए। ये शायद इतिहास में एक ही ऐसा विवाह है, चार भाई और चार बहनें इस तरफ और चारों का एक साथ विवाह हुआ। तो दशरथ महाराज ने हर एक पुत्र के नाम पर एक एक लाख गाय दान दी उस समय, एक एक लाख गाय हर एक पुत्र के नाम पर। ओके ठीक है, ये ले जाओ। तो देखिए हम लोग कृष्ण लीला में भी सुन रहे थे, गाय दान दी गई, कितनी दान दी थी, 20 लाख गाय दान दी नंद महाराज ने, यहां भी देखते हैं। तो गायों का दान, गोदान, ये बड़ा श्रेष्ठ माना गया है गायों को दान करना। हम कई जगहों पर देखते हैं राजाओं ने गायों को दान किया, ब्राह्मणों को, अन्य लोगों को, यहां भी देख रहे दशरथ महाराज ने 1-1 लाख गाय हर एक पुत्र के लिए दान में दी। क्यों दी गाय? ये सत्व गुण बनाए रखने में बहुत सहायक है। जहां भी गाय होती है वहां सत्व गुण होता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पहले तक, जब तक ब्रिटिश साम्राज्य नहीं आया था, कई राज्यों में जैसे बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और अन्य कई स्थानों में भारत के लोगों से ज्यादा गायें थी, जनसंख्या से ज्यादा गायों की संख्या थी। और कोई मारता नहीं था, कोई कत्लखाना नहीं था। अंग्रेजों ने पहला कत्लखाना शुरू किया, 10,000 गाय एक दिन में मारते थे, वो काटते थे, ये अंग्रेजों ने पहला शुरू। उसके पहले तक कोई कत्लखाना नहीं था। गायों की पूजा करने वाला ये स्थान है भारत। आज से 5,000 वर्ष पूर्व जब नैमिषारण्य के ऋषि मुनि बैठे थे, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, अगर उनको ये कहा भी जाता कि आगे चलकर गायों को काटा जाएगा, वो विश्वास नहीं करते कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूजा करते हैं। और इसका प्रमाण क्या था? इसका प्रमाण भागवत में आता है, पहले ही स्कंद में, जब उन्होंने देखा सुना कि परीक्षित महाराज ने एक ऐसे व्यक्ति को जो पांव से गाय को मार रहा था उसको दंड दिया, तो बड़ा आश्चर्य हुआ शौनक आदि ऋषियों को। क्या आश्चर्य हुआ उनको? उनको यह आश्चर्य नहीं हुआ कि दंड क्यों दिया केवल पांव लगाने से। उन्होंने ये प्रश्न किया सुत गोस्वामी से कि परीक्षित महाराज ने उस व्यक्ति को जिसने गाय को पांव से मारा केवल दंड दिया, उसे मार क्यों नहीं दिया? ये उनका प्रश्न था। तो ये हमारी सभ्यता थी। अगर उस समय उनको कहा जाता कि आगे चलकर गायों को काटा जाएगा, वो कभी विश्वास नहीं करते। लेकिन आज है ये अवस्था। जब अंग्रेज गए यहां से सन 1947 में, उस समय केवल 350 कत्लखाने थे भारत में, बड़े बड़े। हमारे भारत के नेताओं ने घोषणा की थी कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बनूंगा सारे कत्लखाने बंद करा दूंगा, ये रिकॉर्डेड घोषणा है। और आज भारत में हजारों कत्लखाने हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, हमने अपनी सभ्यता को त्याग दिया जो गोरक्षा गायों पर आधारित थी। फिर कृष्ण से प्रेम कैसे होगा? इसीलिए यहां हम लोग देखते हैं कि गायों को दान दिया गया। बहुत कुछ कहा जा सकता है गायों के विषय में। गाय का महत्व प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम के ही पहले स्कंद में कि जिस स्थान में गाय और बैल प्रसन्नता से रहते हैं, मानना चाहिए कि सारी मानवता वहां प्रसन्नता से रह रही है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद लिखते हैं। केवल गाय और बैल अगर प्रसन्न है, सभी लोग प्रसन्न है। वैसे भी प्रभुपाद कहा करते थे कि हमें बहुत सरल जीवन जीना चाहिए। जीने के लिए क्या चाहिए? वो कहते थे एक थोड़ी सी भूमि हो और एक गाय हो, व्यक्ति अपना जीवन चला सकता है। ये हमने आधुनिक बनकर ऑफिसेस खोलकर कॉरपोरेट्स बना बनाकर गायों के महत्व को कम कर दिया। इसलिए हमें पुनः गोरक्षा गो सेवा गो पूजा पर वापस जाना चाहिए, ताकि वो वातावरण, वो आध्यात्मिक वातावरण भारत में फिर से आ सके। तो ऐसे दशरथ महाराज ने दान दिया और अगले दिन अब विवाह के लिए जाना था। तो कैसे गए दशरथ महाराज और विवाह कैसे हुआ, इसका वर्णन कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ बोलो, केवल हाथ मत उठा, बोलो।
गायों को दान देने के बाद जब वो दूध नहीं देती तो उसको बेच दिया जाता है, ऐसे में दान कहाँ करना चाहिए?
गायों को दान देने के बाद अगर वो दूध नहीं देती तो उसे बेच दिया जाता है, ऐसे में दान कहाँ करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दान कहाँ करें। हम सोचते हैं हमने गाय दान कर बहुत बड़ा कार्य किया, और अगर वो गाय को बेच देता है काटने के लिए तो पाप आपको भी लगेगा। इसीलिए गाय दान कहाँ करें, हमें जहाँ विश्वास है। जैसे हम लोग बड़े हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि इस्कॉन संस्था की किसी भी गौशाला में गायों को बेचा नहीं जाता। हमारे यहाँ जो गौशालाएं हैं वो इस नियम में चलती हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान भी गाय को नहीं दिया जाता। गाय अगर बूढ़ी भी हो जाए, दूध भी नहीं दे, तो भी उसकी सेवा की जाती है। लोगों ने ये सोच लिया कि जब तक गाय दूध देती है वो महत्वपूर्ण है, दूध नहीं देती तो बेकार है। लेकिन देखिए, गाय का दूध बिकता है 60 रुपए लीटर या 70 रुपए, कितना है, कौन लेता है? 65, ओके ठीक है, 65 रुपीज लीटर। और गोमूत्र बिकता है 200 रुपए लीटर। यस, हमारी संस्था खुद बेच रही है उसको और लोग बहुत खरीद रहे हैं। हमारे पास इतनी डिमांड है कि हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। तो गोमूत्र बिकता है, और गाय का गोमूत्र तो उसके मरने तक अवेलेबल होता है। तो आपको दूध से केवल 65 रुपया मिल रहा है, गोमूत्र वो 200 रुपया दे रहा है लीटर, और 300 आजकल तो ये कोरोना की वजह से गोमूत्र का रेट भी बहुत बढ़ गया है, 300-400 रुपये लीटर हो गया, लेकिन फिर भी 200 रुपये लीटर तो नॉर्मल रेट था। तो गोमूत्र महत्वपूर्ण है। गोबर जो गाय अंत तक देती है, गोबर से कितने सारे अभी दवाइयां बनाई जा रही हैं गोबर गोमूत्र इत्यादि से। तो अगर हमें गाय की सेवा करनी है, गोरक्षा करनी है, तो केवल गोदान करने से नहीं होगा कि हमने कुछ दान कर दिया, एक कुछ पंडित आया उसने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े और हमें लगा बस हमारा जीवन सफल। गोरक्षा का सही मार्ग क्या है, अगर आप रक्षा कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम अपने अपने घरों में इन पदार्थों का उपयोग शुरू कीजिए, गाय से संबंधित पदार्थ, क्योंकि जब ये पदार्थ ज्यादा बिकने लगेंगे तो किसान गायों को काटने नहीं भेजेंगे। जब उसको पता चलेगा कि अरे गोमूत्र से 200 रुपया मिलता है तो वो दूध की चिंता नहीं करेगा, वो गाय को संभाल कर रखेगा, आज उसको पता नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए हमारे जीवन में, चाहे हम साबुन इस्तेमाल करें या फिर गो अर्क भी, गो अर्क आता है रोज, अगर कोई सुबह 1-2 चम्मच ले लें तो उनकी जो इम्यूनिटी है बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और आजकल इम्यूनिटी की बड़ी चर्चा हो रही है, तो इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये अभी के लिए नहीं है कि अभी के समय में सब लें, ये जीवन भर ले सकते हैं, कभी बीमारी कम बहुत कम आएंगी। तो हमें ये सब चीजें ध्यान करनी है कि हमें गोरक्षा करनी है तो केवल गोदान नहीं करें, और अगर गोदान करते हैं तो उस स्थान पर करें जहां आप रोज देख सकते हैं कि वो गाय है या नहीं है, और केवल गोदान नहीं करें उसके साल भर का चारा भी दे कम से कम। लोग गोदान कर देते देव खाएगी कहां से, तो इसीलिए ऐसे स्थान पर कीजिए जहां पर आपको दिखे कि ये गाय सुरक्षित है, अन्यथा आप गायों के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, उससे भी गाय की रक्षा हो जाएगी। बहुत से तरीके हैं, लोगों को बताइए गोरक्षा के महत्व को, यह भी गायों को बचाने का एक तरीका है। तो गायों को बचाने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम बंदूक लेकर सड़क पर खड़े हो जाएं और देखते हैं कौन गायों को मारते हैं। हम गायों के पदार्थों को, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, जैसे साबुन बन रहे हैं आजकल और कई दवाइयां बन रही हैं, आपको खांसी हो रही है उसकी बहुत अच्छी दवाई बनी हुई है, आपको दर्द है उसका मलहम बना हुआ है, ये सब गोमूत्र गोबर से बना है, टूथ दांतों को मांजने के लिए दंत मंजन बना हुआ है। तो कम से कम दिन में एक तो ऐसी चीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जो गाय से आ रही है। तो देखिए धीरे धीरे अगर पूरे भारत में इसकी बात फैल जाए तो अपने आप गायों की रक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
दीक्षा गुरु द्वारा प्रामाणिक शिक्षा गुरु को कैसे समझा जाए, क्या उनको भी दीक्षा गुरु जैसा समर्पण करना चाहिए?
प्रभुपाद समझाते हैं कि गुरु एक ही होते हैं, शिक्षा दीक्षा गुरु, लेकिन गुरु तत्व एक है, क्योंकि वो सब एक ही बात कहते हैं, एक ही परंपरा का पालन करते हैं, इसीलिए वो एक है। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को कैसे हमें आचरण करना चाहिए? स्वाभाविक है आज के समय में हम लोग दीक्षा गुरु को महत्व देते हैं, निश्चित देना चाहिए, लेकिन शिक्षा गुरु को भी हमें उसी समान मानना चाहिए। आपको बताएं भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं, आपने हमसे ये प्रश्न किया तो हम अपना नहीं भक्ति विनोद ठाकुर की बात कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरे विचार से शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को जो पापी है अधर्मी है सब पाप में लगा है उसको वो खत्म करवा कर उसका वो जीवन तैयार करता है दीक्षा के लिए। जैसे आज हम लोग भी देखते हैं अपनी संस्था में दीक्षा गुरु जब दीक्षा देते हैं तो तब तक तो सब तैयार करके जाना पड़ता है, 16 माला जप कर रहा है सब कर रहा है, लेकिन शुरुआत कौन कराता है? शिक्षा गुरु। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं मेरे मत से शिक्षा गुरु ज्यादा महत्वपूर्ण है दीक्षा गुरु से। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आज से हम लोग दीक्षा गुरु को महत्व नहीं दें, दीक्षा गुरु तो डेफिनेटली महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें परंपरा से जोड़ते हैं, कृपा करते हैं, बहुत ऊंचे स्तर के हैं। तो अगर हम इस बात को भक्ति विनोद ठाकुर की स्वीकार करें तो हमें दोनों को समान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि दीक्षा गुरु वो हैं जो हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें हमारे पापमय जीवन से उबारते हैं, और फिर दीक्षा गुरु हमें परंपरा में जोड़ देते हैं और कृपा करते हैं। तो दोनों का महत्व समान कम से कम होना चाहिए। यस।
शिव धनुष को विष्णु और शिव के अलावा सीता माता ने उठाया, मतलब सीता माता में काफी बल था, रावण शिव धनुष नहीं उठा पाया, फिर सीता माता को कैसे उठा ली?
बहुत लॉजिक है ना, कोई वकील है क्या प्रश्न पूछने वाले? प्रश्न ये पूछा गया कि भाई सीता ने धनुष उठा लिया था तो सीता में बहुत बल था, रावण नहीं उठा पाया, तो फिर रावण सीता को कैसे उठा कर ले गया? लॉजिक अच्छा है। हमने उस समय भी कहा था कि शिव जी ने दबा दिया था उस धनुष को, भारी कर दिया था जब रावण उठाने आया था, तो रावण में बल था, शक्ति थी, लेकिन शिव जी की योजना से उठा नहीं पाया। और दूसरी बात, वैसे भी सीता को कौन उठा ले जा सकता है? सीता गई या नहीं गई ये अभी हम लोग थोड़े ही दिनों में सुनने वाले हैं, तो इसलिए सीता को तो वैसे ही कोई नहीं उठा सकता, रावण की क्या बिसात है। आगे पढ़िए।
रावण का नाम कैलाश उठाने के बाद पड़ा या पहले?
रावण का नाम पहले से रावण है, दशानन रावण ये उसके पहले से नाम है, कैलाश उठाने के बाद नहीं।
Those who are vegan means they don't consume cow products. Why it is? What is difference in consuming cow milk and other milk?
शास्त्रों में विशेष करके आयुर्वेद में भी गाय के दूध को अमृत माना गया है। अन्य भी दूध हैं अन्य प्राणियों के, लेकिन गाय के दूध को अमृत माना गया है। भक्ति की दृष्टि से भी गाय का दूध ये अमृत है, क्योंकि ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकार करने के लिए तैयार कर देता है। और भगवान श्री कृष्ण गोपाल कहलाते हैं, भैंसपाल नहीं है, तो इसीलिए गायों का दूध बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो लोग इस समय कुछ ऐसे प्रचार हो रहा है कि हमें गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, किसी प्राणी को अत्याचार नहीं करना चाहिए, हम तो कहते हैं कि वे लोग गाय का दूध ना पीकर ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो किसान फिर भी गाय को रखे हुआ है ये सोचकर कि मुझे दूध से कुछ इनकम प्राप्त होगी। अगर हमने दूध ही पीना बंद कर दिया तो वो तो गाय को तुरंत मारना शुरू कर देगा। तो एक तरफ हम कहते हैं कि हम गायों पर क्रूरता नहीं करना चाहते, उनका दूध पीना ये क्रूरता है, हमारे हिसाब से तो उनका दूध ना पीना ये क्रूरता है, क्योंकि हम स्लॉटर को मोर प्रमोट कर रहे हैं, और ज़्यादा मारो उनको, क्योंकि दूध की भी वैल्यू नहीं रही है। तो हाँ, ये बात दूसरी और ये भी है कि कुछ चीज़ें जो वो कहते हैं वेगन इत्यादि, वो सही भी हैं कि कई स्थानों पर गायों के साथ अत्याचार होता है, उनके जो बछड़े हैं उनको दूध पीने नहीं दिया जाता, जरा सा वो बस मुंह लगाते हैं उनको हटा लिया जाता है और सारा दूध निकाल लिया जाता है, तो ये अत्याचार है। या फिर कई जगहों पर गायों को दूध निकालने के लिए मशीनें लगी हुई हैं, तो इतनी जोर से खींचती उनका खून तक निकल आता है, तो ये अत्याचार है। तो इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और इसको हमें रोकना चाहिए। तो कम से कम अगर हमें, हम जानते हैं, जैसे यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक भक्त हैं जो रोज सुबह जाकर गाय का दूध निकालते हैं खुद, हाँ, महामुनि प्रभु, वो अभी भी जाते हैं, रोज सुबह जाते हैं और एक गाय है उसका दूध निकाल कर लेकर, मतलब गाय वाले की है, ऐसे नहीं कि किसी की भी गाय का दूध निकाल लाते हैं, तो गौशाला में जाकर आज वो निकालते हैं, तो उसमें कोई अत्याचार नहीं होता, ऐसा दूध पीने में क्या कमी, क्या गलती है? कहीं गाय के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा, बछड़े को भी दिया जा रहा है। तो ये इस तरह है कि अगर आंख में कैटरैक्ट हो गया तो आंख को ही निकाल दीजिए, नहीं, आंख में कैटरैक्ट हुआ है तो कैटरैक्ट ठीक करना है, आंख को नहीं निकालना है। तो अगर गायों के साथ अत्याचार हो रहा है तो इसका उपाय ये नहीं कि हम दूध पीना छोड़ दें, इसका उपाय ये है कि हम उस अत्याचार के लिए क्या कर सकते हैं, उसको प्रयास करें बंद करने का। तो इसलिए हमारा मानना ये है कि थोड़ी बातें उनकी सही हैं, लेकिन उनका जो उन्होंने हल निकाला है वो सही नहीं है। हाँ जी।
कोरोना वायरस के कारण बहुत से गरीबों को सहायता चाहिए,
जबकि हमारी सरकार भी डोनेशन के लिए कह रही है, तो ऐसे कहाँ दे सकते हैं?
सरकार भी कह रही है डोनेशन देना चाहिए और कोरोना वायरस के लिए इस समय बहुत चाहिए, तो हमें कहाँ दे सकते हैं? पहली चीज, हमने सुना है देश के प्रधानमंत्री ने एक फंड बनाया है जिसमें कोई भी मदद कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा है क्योंकि वो देश के लिए जाएगा, चाहे तो उसमें दे सकते हैं। वैसे एक दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत में बहुत बड़ा उत्पात हो सकता था, उन्होंने बड़े कड़े निर्णय लेकर इसको रोका हुआ है, तो हमें बड़ा धन्यवाद देना चाहिए और पूरा सहयोग करना चाहिए। और ऐसी कई और संस्थाएं हैं जो कर रही हैं, जैसे इस्कॉन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, हमारे दिल्ली मंदिर से, द्वारका मंदिर से बहुत अच्छी तरह से प्रसाद बट रहा है बड़े स्केल पर, तो वहाँ मदद कर सकते हैं। और हम लोग भी यहाँ ग्रेटर नोएडा में अपने थोड़े से स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि एक दो दिन में हम लोग ये व्यवस्था कर सकें कि जो गरीब आसपास के जितने भी लोग हैं जिनको काम नहीं है, उन लोगों के लिए तकलीफ है। जैसे बहुत से लोग हैं जो रोज का कमाई करते थे, अब उनकी रोज की कमाई बंद हो गई तो उनके पास खाने की कमी है, या ऐसे अन्य लोग, तो हम लोग भी यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ उनको प्रसाद के पैकेट्स बनाकर हम लोग बांट सके। वैसे हम लोग कल करके भी आए हैं, थोड़ा बांट कर आए हैं, तो अब एक दो दिन में व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप सब अगर चाहें तो आप सबका सहयोग होगा तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये खिला सकेंगे। तो जहाँ भी इस ऐसे स्थान पर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में कई ऐसी धोखा देने वाली संस्थाएं बन जाती हैं। आपको शायद समाचार आ रहे होंगे किसी ने ये बनाया वो बनाया, हमें बिल्कुल इस सब में नहीं पड़ना है। तो आप या तो जैसे इस कौन संस्था जैसे संस्थाओं को दें, क्योंकि आप देख रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, या फिर आप सरकार को सीधे दे दें तो कम से कम आपका गलत जगह इसका उपयोग नहीं होगा। तो एक दो दिन में आपको ये सूचना हम लोग दे देंगे कि किस प्रकार से हमने यहाँ इस्कॉन ग्रेटर नोएडा से इस मंदिर से क्या व्यवस्था की है, तब आप हम सबको हमको सर आप पूरा सहयोग कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, और है,
जैसा आपने बताया कि शिव जी ने धनुष भारी कर दिया था, शिव जी ने ही रावण को पहले वरदान दिया था, जबकि वो इतना दुराचारी था, ऐसा क्यों?
शिव जी ने रावण को वरदान दिया था कि वो दुराचारी था और उन्होंने ही भारी कर दिया, ऐसा क्यों? शिव जी, इनका कार्य है अगर कोई बहुत कड़ी तपस्या करता है तो उसको वरदान देना, और रावण ने बहुत कड़ी तपस्या की थी तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, शिव जी ने वरदान दिए, ये तो प्रकृति का नियम है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई दुराचारी इत्यादि है तो उसको समाज में नहीं रहना चाहिए। समाज में हर समय ऐसे कई प्रकार के लोग रहे हैं, दोनों लोग रहे, सुर असुर एवच। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि इस जगत में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं और वे हमेशा से बने रहेंगे। तो इसीलिए शिव जी ने तपस्या के आधार पर उनको दिया, और लेकिन जब वो जानते थे कि ये है दुराचारी हो गया है मेरे से शक्ति प्राप्त करके, तो इसीलिए उन्होंने उसको भी भारी कर दिया ताकि ये अनर्थ ना कर पाए। ठीक है।
विवाह के समय भगवान राम की उम्र 16 वर्ष की, तो सीता माता की कितनी थी?
सीता माता की उम्र कितनी थी लिखा तो नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया, अभी आपने पूछा है तो पढ़ने का प्रयास करेंगे, और अगर आप लोग चाहें तो प्रयास करेंगे कि उनसे उनके जन्म की तिथि और उनके जन्म का समय भी मंगा लें ताकि आप लोग कुंडली बना सकें उनकी। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।